सभोपदेशक अध्याय 10 पद 1। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बासने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बड़े पद पर बैठे लोगों को मूर्खता भरे काम नहीं करने चाहिए। हाल ही में पढ़ने को मिला है कि अमेरिका में बोहेमियन नामक एक क्लब है। इस क्लब के सदस्य देश के बड़े पदों पर बैठे लोग हैं। ये सब लोग एकांत वास के लिए वर्ष में एक बार सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में किसी स्थान पर जाते हैं। वहां उनकी मनोरंजन विधि ये है कि वे बेढंगे कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं और तरह तरह के संस्कार निभाते हैं। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बासने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। दूसरे शब्दों में, वे जो ज्ञान और सम्मान की प्रतिष्ठा रखते हैं, उनके लिए ये मूर्खता है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 2। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। जब हम बच्चे थे, हम अपना क्लब बनाते थे, अपनी गुप्त शपथ लेते और हमारी दीक्षा और संकेत शब्द और बहुत कुछ होता था। हमारे अपने छोटे गिरोह और गुप्त विभाग होते थे, और आप जानते हैं, खून का रिश्ता। हम सब भाई होते थे, और ऐसे ही कुछ विषय। छोटे लड़के होना अच्छा है, और ऐसे संसार में रहना जो काल्पनिक होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, और तब भी इन गुप्त क्लब में रहना, अपने संकेत शब्द रखना और गुप्त हाथों का हिलाना, और आपकी विशेष रस्सी और कपड़े, टोपी, अर्थात आप अभी भी बड़े नहीं हुए हो, ये आपकी समस्या है। पौलुस कहता है, पहला कोरिंथियों 13 अध्याय 11 पद, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। जब हम सियाने हो जाते हैं तब उन चीजों को छोड़ना होगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा बच्चे ही रहते हैं, इसलिए वो अपने अपना मजाक बनवा लेते हैं और न्यूज में आ जाते हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य का मन उसके दैने हाथ में रहता है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 2 में आगे लिखा है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मैं नहीं जानता, वैज्ञानिक इससे सहमत है, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि मेरे हृदय की गति बढ़ रही है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 3। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वो सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूं। मूर्ख अपनी मूर्खता एक दिन दिखा ही देता है, चाहे वो दिखाना भी ना चाहे। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। ओह, कितना अच्छा है लक्ष्य को हासिल करना, ना कि उसे बीच में छोड़ देना। यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना सीख ले तो बड़े विवादों को शांत कर सकते हैं, बड़े विवादों को रोका जा सकता है, कम से कम हमारा जीवन बच सकता है। संसार में कुछ मूल बातें हैं। बहुत से लोग अपने हटीलेपन के कारण मारे गए हैं। मेरा तरीका सही है। अपने हटीलेपन के कारण लोग मारे जाते हैं, अतः हार मानने से बड़े विवाद शांत हो सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? टोकरी में 5 या 6 मछलियां थी, इस तरह की मूर्ख बातों में हम बड़े विवाद में फंस सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। एक दो दिन के लिए आप बात न करें, यूं कहते हुए कि वो 5 थी, नहीं वो 6 थी, हो सकता है, नहीं 5, ये मूर्खता है। छोड़िए इस बातों पर क्यों वाद विवाद करना, ऐसी बातों में उलझना मूर्खता का परिचय है। छोड़ देने से बड़े अपराध शांत हो जाते हैं, अच्छी सलाह है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 5 से लेकर 7 तक। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वो हाकिम की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। कभी कभी अनियमित बातें हो जाती है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 8। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। उन्होंने सांप को बाहर रखने के लिए बाड़ा बनाया। आप बाड़ा तोड़ेंगे तो सांप डसेगा। आपने गड्ढा खोदा तो आप गड्ढे में खुद गिरोगे। ये मुहावरा है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 9 और 10। जो पत्थर फोड़े वो उनसे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उससे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा तोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करें तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। मित्र, इसलिए याद रखें, यदि आप बिना धार वाले कुल्हाड़े से लकड़ी काटोगे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। धार पैनी कर लें, कम शक्ति लगेगी। समझने वाली बात है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 11। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं, वो उसे भी डसेगा। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 12 से लेकर 14 तक। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदाई बावलापन होता है। मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होने वाला है। हम भविष्य नहीं जानते। लोग बड़े आत्मविश्वास से भविष्य के बारे में बोलते हैं। हम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है और भविष्य में क्या होगा। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 15 और 16। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। हे देश, तुझ पर हाय, जब तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल बोझ करते हैं। इसका अर्थ है वे पूरी रात नशा करते हैं और भोर को वे भोजन करते हैं। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 17 और 18। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वो भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है। यदि आप इस घर के प्रबंधक होते तो आप लोगों को काम करवाने हेतु समय निर्धारण करते। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 18 और 19। और हाथों की सुस्ती से घर टपकता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी पत्नी ये मानती है कि ये आत्मिक सच्चाई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये सुलेमान का तर्क है और वो सांसारिक ज्ञान के आधार पर कह रहा है। ये आश्चर्य की बात है, संसार सोचता है कि धन हर चीज का निवारण है, धन सब चीजों का उत्तर है। सभा उपदेशक अध्याय 10 पद 20, राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी से शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। आश्चर्यजनक, आप गुप्त में किसी के बारे में कहते हो ये सोचकर कि बात किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन विस्मित करने वाली बात यह है कि आपकी बात घूम फिर कर आपके पास ही लौट आती है। तब आपको फोन आता है, क्या आपने ऐसा कहा? और जब आपने ऐसा कहा, आपका क्या मतलब था? काश मैंने ये बात नहीं कही होती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं।